पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। नेगेटिव कोरोना जांच नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री संगरोध से बाहर। भारतीय मूल की लीना नायर बनी शनेल की सीईओ। और एडिलेड टेस्ट से पहले इंग्लैंड की क्रिकेट टीम बिठा रही है बेहतर तालमेल। और अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ द्वारा निकट संपर्क चिन्हे जाने के बाद प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की दो बार कोरोना जांच हो चुकी है। दोनों ही बार प्रधानमंत्री कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। श्री मॉरिसन ने सिडनी के एक हाई स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी में शिरकत की थी, जो बाद में एक्सपोजर साइट के रूप में सूचित की गई थी। श्री मॉरिसन उन 1000 लोगों के समूह का हिस्सा थे जिन्होंने 10 दिसंबर को डार्लिंग हार्बर स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किनकोपल रोज बे ग्रेजुएशन गाला में शिरकत की थी। इन 1000 लोगों में से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित थे। श्री मॉरिसन को अब मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से क्वींसलैंड यात्रा की अनुमति मिल गई है। आज सुबह उनके खुद के संगरोध नियमों को खारिज किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मॉरिसन ने क्वींसलैंड सरकार से आग्रह किया था कि वे क्वींसलैंड पहुंची दो चिंताजनक फ्लाइटों के यात्रियों को क्रिसमस के समय अनिवार्य संगरोध में न डालें। सार्वजनिक निंदा और पीएम की अपील के बाद अब क्वींसलैंड में अनिवार्य संगरोध में भेजे गए हॉटस्पॉट फ्लाइट के यात्री क्रिसमस से पहले बाहर आ सकेंगे। क्वींसलैंड राज्य में आज 6 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। ये सभी अंतर्राज्यीय यात्री हैं जो क्वींसलैंड में कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। वे संक्रमित होते हुए पिछले 6 दिन से समुदाय में थे। क्वींसलैंड की स्वास्थ्य मंत्री इवेट डॉथ का कहना है कि इन दोनों फ्लाइटों के अधिकांश यात्रियों को निकट संपर्क की श्रेणी से हटाकर casual संपर्क की श्रेणी में डाल दिया जाएगा।
Just as we did with Delta, when a new variant comes along, this is the first domestic flight into Queensland where there is a potential Omicron case on board, that the public health unit acted cautiously. We took that same cautious approach when we first started seeing Delta. Omicron's very new, but I welcome the advice of the Chief Health Officer in relation to these issues.
वे यात्री जो इस संक्रमित व्यक्ति के करीब यानी आगे पीछे और बगल के रो में बैठे थे उन्हें अनिवार्य रूप से 14 दिन का संगरोध करना होगा। इसमें क्रिसमस का समय भी शामिल है। विक्टोरिया में आज रात से सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों में वैक्सीन और अनिवार्य मास्क की शर्तों में बदलाव किए जाएंगे। आज मध्य रात्रि से रिटेल, रियल एस्टेट, पूजा स्थलों, शादियों और अंतिम संस्कारों में आगंतुकों और ग्राहकों को टीकाकृत होने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि आतिथ्य उद्योग में अब भी टीकाकरण अनिवार्य रहेगा। 18 साल से कम के व्यक्तियों को अब किसी भी व्यवस्था में टीकाकरण का साक्ष्य दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे कार्यस्थल जो एक्सपोजर साइट हो गए हैं वहाँ अब गहन सफाई की आवश्यकता भी नहीं होगी। विक्टोरिया के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि शादियों और अंतिम संस्कारों में अब मास्क अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन रिटेल व्यवस्था में अब भी मास्क आवश्यक रहेंगे।
And those tweaks are of course informed in large measure by the relative uncertainty that the Omicron variant brings as we start to learn more about what that means, the advice that we get from from AHPPC, from our public health experts, both locally, interstate and around the world, will very much inform how we stay open and stay safe going into 2022.
विक्टोरिया ने आज 1405 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित मामले दर्ज किए हैं। राज्य में आज 3 कोरोना संबंधी मृत्यु भी दर्ज की गई थी। उधर न्यू साउथ वेल्स में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में 104,000 जांचों में से 1,360 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। राज्य में एक मृत्यु भी दर्ज की गई है। यह तब आता है जब आज से राज्य में दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रों के लिए अनिवार्य संगरोध नियमों को हटा दिया जाएगा और कोरोना प्रतिबंधों में भी ढील दी जाएगी। राज्य में अब घरों, बाहर और आतिथ्य की व्यवस्थाओं में अब आगंतुकों की गिनती पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसी के साथ वे लोग जिन्हें टीका नहीं प्राप्त है वे अब आतिथ्य और गैर जरूरी रिटेल के स्थलों पर जा सकेंगे। चैनल 7 से बात करते हुए पूर्व उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर निक कोट्सवर्थ ने मामले बढ़ने के बावजूद प्रतिबंधों में ढील देने के इस फैसले का बचाव किया है।
As people mingle, case numbers are going to go up, but the important number, of course, is people who are being hospitalised, people who are getting severely unwell with COVID-19, and that's really the number we should be focused on. So I think New South Wales are progressing in the right direction, and I've got to say, if not now, then when? I mean, they're 93% double vaccinated. Now certainly the time to lift those restrictions.
आज यानी 15 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया ने वर्किंग हॉलिडे मेकर, कुशल प्रवासियों और छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोल दिए हैं। सरकार का अनुमान है कि करीब 2,35,000 वीजा धारक अब देश में आ सकेंगे, जिनमें 1,33,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र भी शामिल हैं। डॉक्टर मेलिंडा हिल्डेब्रांड विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के मिशेल इंस्टीट्यूट में शिक्षा नीति विशेषज्ञ हैं। उनका कहना है कि कई अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के कैनेडा, यूके और अमरीका की ओर रुख करने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर विश्व शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्थान दोबारा हासिल कर लेगा।
We have every reason to feel optimistic, I would say, because that appetite among international students for that boots on the ground experience, you know, that immersion in a local culture and language that we've seen take place overseas, feel really, really hopeful that that is going to be the case for us. So I don't think that appetite among international students has abated despite the anxieties of the pandemic.
Business Council की मुख्य सचिव Jennifer Westcott का कहना है कि इन वीजा धारकों के लिए सीमाएं दोबारा खोलना ऑस्ट्रेलिया के किला बन जाने वाली मानसिकता से बाहर आने की ओर एक बड़ा कदम है। हैदराबाद के अरविंद परचूरा ऑस्ट्रेलिया आ तो गए हैं, पर उनके वीजा पर अब केवल एक महीना शेष है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को विश्वास है कि उनका 482 श्रेणी का वीजा 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
I got the visa 2 years back, so I was waiting two years at my home country because of the flights ban and COVID restrictions. So my visa is ending next month, so I came here to apply for renewal actually. So almost 2 years cost my career. I finally arrived, I'm happy to be here. So I go to quarantine for 3 days, get tested.
उधर सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड और दी एज की एक संयुक्त जांच में पाया गया है कि गठबंधन के संसद क्षेत्रों को पिछले 3 साल में $1.9 बिलियन की सरकारी मदद दी गई, जबकि लेबर संसद क्षेत्रों को इसी काल में $530 मिलियन ही आवंटित किए गए। पत्रकारों ने 151 संसद क्षेत्रों में 19,000 सरकारी मददों की जांच की। तस्मानिया से विपक्ष नेता एंथनी एल्बनीजी का कहना है कि इस जांच ने मॉरिसन सरकार का पर्दाफाश कर दिया है।
Taxpayers don't pay different rates of tax according to what electorate they're in, and the pork barreling is just out of control. This government have control set up a number of funds, sports rorts, commuter car park routes, regional grants, a whole range of programs. They've even politicized the community safety program.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत के साथ शक्कर पर लगी सब्सिडी को लेकर हुए एक व्यापारिक विवाद में विश्व व्यापार संगठन ने फैसला ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला के हक में दिया है। संगठन के सामने 2019 में आए इस मामले में विरोधी उत्पादकों ने यह आरोप लगाया था कि भारत ने घरेलू उत्पाद और निर्यात के लिए शक्कर और गन्ने के लिए अधिक समर्थन देकर नियमों का उल्लंघन किया है। भारत दुनिया में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा शर्करा उत्पादक है। भारत ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। और अब खबरें भारत से। दुनिया की बड़ी कंपनियों में भारतीयों का दबदबा बढ़ रहा है। हाल ही में पराग अग्रवाल को ट्विटर की कमान मिली थी, वहीं अब भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित किया गया है। लीना अभी तक एंग्लो डच कंपनी यूनिलीवर की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रही थी। यूनिलीवर की पहली महिला और सबसे कम उम्र की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी लीना ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक लीना नायर अब फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल में अपने नए रोल के लिए लंदन में काम संभालेंगी। उधर भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित लॉस एंजलिस के मेयर एरिक माइकल गॉर्सेटी ने कहा है कि भारत कठिन पड़ोसियों के बीच स्थित है और वे अपनी सीमाओं एवं संप्रभुता की रक्षा करने तथा हमलों को रोकने की भारत की क्षमता को मजबूत करने के अमरीकी प्रयासों को और आगे बढ़ाएंगे। 50 वर्षीय एरिक माइकल गॉर्सेटी वर्तमान में लॉस एंजलिस के मेयर के रूप में सेवारत हैं और वे अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निजी विश्वास पात्र हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.04 और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 71 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने यह स्वीकारा है कि उन्होंने बेन स्टोक्स की वापसी से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थीं, पर साथ ही यह भी कहा है कि टीम में एडिलेड में होने वाले दूसरे टेस्ट में बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। उनका कहना है कि धीमे रन रेट की वजह से टेस्ट चैम्पियनशिप में अंक खोना पूरे मैच की फीस खोने से भी ज़्यादा तकलीफदेह है। अंग्रेजी दल को पहले टेस्ट में धीमे रन रेट के चलते पूरी मैच की फीस के साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5 अंकों का जुर्माना भरना पड़ा था। और अंत में एक नज़र कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में धूप खिली रहेगी, यहाँ अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में बूंदाबांदी हो सकती है, अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी कल हल्की बरसात हो सकती है, अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में तूफान के साथ तेज बारिश की आशंका है, अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव का मौसम रह सकता है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।